ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम कैंटो नंबर 9 चैप्टर नंबर 10 श्लोक संख्या 1। तो मैं रामायणी नहीं हूं, इसलिए मैंने सोचा कि भागवतम क्लास में भागवतम ही पढ़ूं। तो लॉर्ड रामचंद्र की लीला है यहाँ भागवतम में, 4 चैप्टर में दी गई है, 4 अध्याय। उनमें से 2 अध्याय हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, अर्थात जितना टाइम हमें परमिट करेगा इतना पढ़ेंगे और चर्चा भी करेंगे। तो रिसाइटेशन में स्किप करता हूँ और ज़्यादातर वो तो इंग्लिश होगा। माय गॉड, आई फॉरगॉट अबाउट दैट, ये तो इंग्लिश का क्लास हो गया, हिंदी में तो पावर पॉइंट है नहीं। ठीक है, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में भी अनुवाद मैं करूंगा। यस यू कैन ब्रिंग। तो दोनों मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा क्योंकि भागवतम इधर है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज खटवंग का पुत्र दीर्घबाहु हुआ और उसके पुत्र विख्यात महाराज रघु हुए। महाराज रघु से अजय उत्पन्न हुए और अजय से महापुरुष महाराज दशरथ हुए। श्लोक संख्या 2। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान परम सत्य अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पवित्र नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न। ये विख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में 4 स्वरूपों में प्रकट हुए। हे राजा परीक्षित, भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। चूंकि आप सीतापति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, अतएव मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षिप्त में ही करूंगा, कृपया सुने। श्लोक संख्या 4। अपने पिता के वचनों को अक्षत रखने के लिए भगवान रामचंद्र ने तुरंत ही राजपद छोड़ दिया और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ एक जंगल में दूसरे जंगल में अपने उन चरण कमलों से घूमते रहे जो इतने कोमल थे कि वे सीता की हथेलियों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे। तो कल हम एक मीटिंग में राम कथा कर रहे थे, तो हरग्रेस मदन मोहन मोहिनी देवी दासी वो ये सारा वृत्तांत हमें सुना रही थी। तो ये कह रही थी कि रामचंद्र भगवान इतने कोमल थे, तो सबसे हार्ड पार्ट पांव की जो नीचे तले क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं पांव का नीचे का भाग सबसे हार्ड होता है ना, क्योंकि हम चलते हैं उसके ऊपर। तो उनका वर्णन किया गया कि सीता ठाकुर रानी का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते, ऐसे छू भी लिया तो इतने कोमल उनके पांव चरण थे, तो वो कितने कोमल होंगे। पांव भी वही है लेकिन ऊपर वाला शरीर की बात कर रहा हूं मैं, कितना कोमल होगा, मक्खन की तरह ना, मक्खन बहुत कोमल होता है। तो वे सीता की हथेलियों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे, तो कैसे चलते होंगे कंकड़ और कुछ ग्रास छुप जाता है, त्रिणांकुर। भगवान के साथ उनके अनुज लक्ष्मण तथा वानरों के राजा हनुमान या एक अन्य वानर सुग्रीव भी थे। ये दोनों जंगल में घूमते हुए राम लक्ष्मण की थकावट मिटाने में सहायक बने। सुरपर्णखा की नाक तथा कान काटकर उसे कुरूप बनाकर भगवान सीता देवी से बिछुड़ गए, अतएव वे अपनी भौहें तान कर क्रुद्ध हुए और सागर को डराया कि जिसने भगवान को अपने ऊपर से होकर पुल बनाने की अनुमति दे दी। तो एक सवाल भी चर्चा की गई कल हमसे कि सूर्णपणखा के नाक क्यों काटे गए, कान नाक कान, तो इसीलिए नहीं कि उनने रामचंद्र से विनती की या अपेक्षा की कि मैं आपकी पत्नी बनना चाहूंगी, इसीलिए नहीं। वो इच्छा रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी कई तरह से टाल सकते थे, लेकिन नाक और कान क्यों काटे? तो वो इसलिए काटे गए कि उनने सीता ठाकुरानी पर हमला किया मारने का, तो उनको बताना पड़ेगा कि हम इनका रक्षण कर रहे हैं, आपका भी कर रहे हैं और उनका भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सीता ठाकुरानी को मारने की कोशिश करोगे तो आपको तो नहीं मारेंगे लेकिन आपको हम मानहीन तो करेंगे या आपको डराएंगे, इसलिए उनको मारा नहीं, मार देना चाहिए था लेकिन मारा नहीं, नाक और कान काट लिए। तो ये वजह है कि उनका भगवान ने ऐसा क्यों किया, उनकी इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए थी। तो कैसे भी कुछ भी करते रामचंद्र, लेकिन एक कारण है। और सागर, सागर को भगवान कहते हैं, विनती करते हैं, इट्स ओके, ओके ले आइए, पास कर दीजिए, पास कर मेरे सास के लिए, आई कैन टॉक नाइसली। तो सागर को भी डराया कि मैं सुखा दूंगा, तो सागर प्रकट होके शरणागत होता है। तत्पश्चात भगवान रावण को मारने के लिए दावानल की भांति उनके राज्य में प्रविष्ट हुए। ऐसे भगवान रामचंद्र हम सबकी रक्षा करें। ये मंत्र प्रेयर्स के लिए है, यहाँ सारी रामायण पूरी हो जाती है चार श्लोकों में, लेकिन ये प्रार्थना के रूप में है। अयोध्या नरेश भगवान रामचंद्र ने, पांचवा श्लोक, अयोध्या नरेश भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ के क्षेत्र में अनेक राक्षसों तथा असभ्य पुरुषों का वध किया, जो तमोगुण से प्रभावित होकर रात में विचरण कर रहे थे। ऐसे रामचंद्र जिन्होंने लक्ष्मण की उपस्थिति में इन असुरों का वध किया, हमारी रक्षा करने की कृपा करें। रामनवमी के अवसर पर हम भगवान रामचंद्र को प्रार्थना करते हैं, ऐसे रामचंद्र भगवान हमारे पर कृपा करें। हे राजन, भगवान रामचंद्र की लीलाएं हाथी के बच्चे के समान अत्यंत अद्भुत हैं, अद्भुत थी। उस सभा भवन में जिसमें सीता देवी को अपने पति का चुनाव करना था, उन्होंने इस संसार के वीरों के बीच भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया। यह धनुष इतना भारी था कि इसे 300 व्यक्ति उठाकर लाए थे, लेकिन भगवान रामचंद्र ने इसे मोड़कर डोरी चढ़ाई और बीच से उसे वैसे ही तोड़ डाला जिस तरह हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है। इस तरह भगवान ने सीता देवी का पाणि ग्रहण किया, जो उन्हीं के समान दिव्य रूप, सौंदर्य, आचरण, आयु तथा स्वभाव से युक्त थी। निस्संदेह वे भगवान के वृक्षस्थल पर सतत विद्यमान लक्ष्मी थी। प्रतियोगियों की सभा में से उसे जीत कर उनके प्रतियोगियों की सभा में से उसे जीत कर उसके माया के से लौटते हुए भगवान रामचंद्र को परशुराम मिले। यह कुछ सेंटेंस में गड़बड़ है। यद्यपि परशुराम अत्यंत घमंडी थे, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार राजाओं से विहीन बनाया था, किंतु एक क्षत्रिय वंशी राजा भगवान राम से पराजित हो गए। श्लोक संख्या 8। अपनी पत्नी के वचनों से बधे पिता का आदेश पालन करते हुए भगवान रामचंद्र ने उसी तरह अपना राज्य, ऐश्वर्य, मित्र, शुभचिंतक, निवास तथा अन्य सर्वस्व त्याग दिया, जिस तरह मुक्तात्मा अपना जीवन त्याग देता है। तब वे सीता सहित जंगल में चले गए। तो मुक्तात्मा, मुक्तात्मा सबसे पहले मुक्तात्मा कौन है? भगवान के भक्त वैष्णव। तो वैष्णव ये शरीर से इतना संलग्न नहीं रहते, शरीर छोड़ने में उनको दुख नहीं होता। यह क्या कहते हैं कि निवास तथा अन्य सर्वस्व त्याग दिया, जिस तरह मुक्तात्मा अपना जीवन त्याग देता है। तब वे सीता सहित जंगल में चले गए। जंगल में घूमते हुए वहां पर अनेक कठिनाइयों को झेलते तथा अपने हाथ में महान धनुष बाण लिए भगवान रामचंद्र ने काम वासना से दूषित रावण की बहन के नाक कान काट कर उसे कुरूप कर दिया। उन्होंने उसके 14,000 मित्रों को भी मार डाला, जिनमें खर, त्रिशिर तथा दूषण मुख्य थे। हे परीक्षित, जब 10 सिरों वाले रावण ने सीता के सुंदर एवं आकर्षक स्वरूप के विषय में सुना तो उसका मन काम वासनाओं से उत्तेजित हो उठा और वह उनको हरने गया। रावण ने भगवान रामचंद्र को उनके आश्रम से दूर ले जाने के लिए सोने के मृग का रूप धारण किए मरीच को भेजा, और जब भगवान ने उस अद्भुत मृग को देखा तो उन्होंने अपना आश्रम छोड़कर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अंत में उसे तीक्ष्ण बाण से उसी तरह मार डाला जिस तरह शिवजी ने दक्ष को मारा था। जब रामचंद्र जी जंगल में प्रविष्ट हुए और लक्ष्मण भी वहां नहीं थे तो दुष्ट राक्षस रावण ने विदेह राजा की पुत्री सीता देवी का उसी तरह अपहरण कर लिया जिस तरह गडरिये की अनुपस्थिति में बाघ किसी असुरक्षित भेड़ को पकड़ लेता है। तब श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में इस तरह घूमने लगे मानो कोई अत्यंत दीन व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहा हो। इस तरह उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से एक स्त्री अनुरक्त पुरुष जैसी दशा प्रदर्शित की। तो रामचंद्र भगवान स्त्री अनुरक्त नहीं थे क्योंकि वो भगवान है और सब कुछ जानते हैं, और सब कुछ जानते हुए भी योग माया का आश्रय लेके लीलाएं करते हैं। तो लीला है, इसलिए बता रहे हैं कि मैं स्त्री अनुरक्त आसक्त। और वैसे भी अपनी पत्नी है, पत्नी में आसक्त होना ये स्वाभाविक है, लेकिन ये बद्ध जीवों के लिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि एक स्त्री आसक्त। पुरुष की तरह वर्तन किया। इस तरह उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से व्यक्तिगत उदाहरण दिया। आसक्त है और नहीं भी है, लेकिन एक उदाहरण से हट किया कि मैं स्त्री आसक्त हूं। स्त्री अनुरक्त पुरुष जैसी दशा प्रदर्शित की। प्रभुपाद जी प्रपोट में लिखते हैं, निसंदेह यह स्त्री संगी का भौतिक पक्ष के लिए पक्ष है, लेकिन भगवान की स्थिति आध्यात्मिक है, क्योंकि वे भौतिक जगत की जगत के प्राणी नहीं है। सेकंड पैराग्राफ, नारायण परो व्यक्तात्, नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत के सृष्टा है, अतएव उन्हें भौतिक जगत की दशाएं नहीं सताती। सामान्यतया सीता से रामचंद्र का वियोग विप्रलंब माना जाता है, जो भगवान की अलादिनी शक्ति की क्रिया है। इसका संबंध श्रृंगार रस से है। आध्यात्मिक जगत में भगवान में सारे प्रेम व्यापार देखने को मिलते हैं, उनमें सात्विक संचारी विलाप मूर्छा तथा उन्माद सभी अवस्थाओं के लक्षण प्रकट होते हैं। तो मधुर रस में आगे जाते हैं तो भक्ति रसामृत सिंधु में ये सब भाव, संचारी भाव, विलाप मूर्छा उन्माद, सात्विक भाव, षट अष्ट सात्विक भाव, कंपन, रोंटे खड़े होना वगैरह, वैवर्ण्य, तो सात्विक भाव संचारी, उसके ऊपर संचारी के ऊपर विलाप, के ऊपर मूर्छा, उनके ऊपर उन्माद, गोपियां उन्माद, ये सब भाव रामचंद्र भगवान माधुरी रस की पराकाष्ठा का अनुभव करते हैं। अतएव जब रामचंद्र जी सीता से वियुक्त हुए तो ये सारे आध्यात्मिक लक्षण प्रकट हुए। भगवान तो निराकार हैं, न शक्तिहीन। भगवान न तो निराकार हैं, न शक्तिहीन, प्रत्युत वे सच्चिदानंद विग्रह हैं। अतएव उनमें आध्यात्मिक आनंद के सारे लक्षण पाए जाते हैं। अपनी प्रियतमा से वियोग का अनुभव भी आध्यात्मिक आनंद ही है, जैसा कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बताया है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति आलादिनी शक्ति अस्मात्। राधा कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की आलादिनी शक्ति के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। भगवान सारे आनंद के मूल स्रोत है, वे आनंद के आगार हैं। अतः भगवान रामचंद्र ने आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही प्रकार से सत्य का प्रदर्शन किया। भौतिक दृष्टि से जो लोग स्त्री से अनुरक्त हैं, उन्हें कष्ट मिलता है, किंतु आध्यात्मिक रूप से जब भगवान तथा उनकी अलादिनी शक्ति में वियोग भाव उत्पन्न होता है तो भगवान का आनंद बढ़ जाता है। इसकी आगे भी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। अव जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो व्यक्ति भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को नहीं जानता, भौतिक दृष्टि से जो लोग स्त्री से अनुरक्त हैं, उन्हें कष्ट मिलता है, किंतु आध्यात्मिक रूप से जब भगवान तथा उनकी अलादिनी शक्ति में वियोग भाव उत्पन्न होता है तो भगवान का आनंद बढ़ जाता है। इसकी आगे भी व्याख्या भगवद गीता में की गई है। जो व्यक्ति भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को नहीं जानता वह उन्हें सामान्य मानव प्राणी मानता है, लेकिन भगवान के मन बुद्धि तथा इंद्रियां कभी भी भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। स्कंद पुराण में इसकी विशद व्याख्या मिलती है, जिसका संदर्भ माध्वाचार्य ने दिया है। तो यहां मैं दूसरा श्लोक लूंगा, 12th श्लोक। भगवान रामचंद्र जी ने जिनकी चरण कमल ब्रह्मा जी तथा शिव जी द्वारा पूजित है, मनुष्य का रूप धारण किया था, अतएव उन्होंने जटायु का दाह संस्कार किया जिसे रावण ने मारा था। तत्पश्चात भगवान ने कबंध नामक असुर को मारा और वानर राजाओं से मैत्री स्थापित करके बलि का वध किया तथा सीता देवी के उद्धार की व्यवस्था करके वे समुद्र के तट पर गए। तो भगवान रामचंद्र का यहां से वात्सल्य शुरू होता है, अपने भक्तों पर कितना प्रेम, भक्तों से कितना प्रेम। जटायु ये भक्त हैं और रावण से उनने अंतरिक्ष में युद्ध किया और रावण ने उनकी पांख काट दी, मार दिया। तो भगवान ऐसा नहीं कि वहां से ये तो पक्षी है करके आगे चले, उनको अपना वात्सल्य दिखाया और अंत में उनका अग्नि संस्कार भी किया। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो रामचंद्र भगवान अपने भक्तों से स्पेशली हनुमान से हर पल वात्सल्य, भक्त वत्सल ता भक्त वात्सल्य बताते हैं। समुद्र तट पर पहुंचकर भगवान रामचंद्र ने 3 दिन तक उपवास किया और वे साक्षात समुद्र के आने की प्रतीक्षा करते रहे। जब समुद्र नहीं आया तो भगवान ने अपनी क्रोध लीला प्रकट की और समुद्र पर दृष्टिपात करते ही समुद्र के सारे प्राणी जिनमें घड़ियाल तथा मगर सम्मिलित थे भय के मारे उद्विग्न हो उठे। तब शरीर धारण करके डरता हुआ समुद्र पूजा की सारी सामग्री लेकर भगवान के पास पहुंचा। उसने भगवान के चरण कमलों पर गिरते हुए इस प्रकार कहा, सागर बोल रहे हैं, हे सर्वव्यापी परम पुरुष, हम लोग मंद बुद्धि होने के कारण यह नहीं जान पाए कि आप कौन हैं, किंतु अब हम जान पाए हैं कि आप सारे ब्रह्मांड के स्वामी अक्षर तथा आदि परम पुरुष हैं। अक्षर मीन्स इनफैलेबल, जिनका पतन कभी नहीं होता, अक्षर तथा आदि परम पुरुष हैं। देवता लोग सतोगुण से, प्रजापति रजोगुण से तथा भूतों के ईश तमोगुण द्वारा अंधे हो जाते हैं। किंतु आप इन समस्त गुणों के स्वामी हैं। श्लोक संख्या 15। हे प्रभु, आप इच्छानुसार मेरे जल का उपयोग कर सकते हैं। निसंदेह आप इसे पार करके उस रावण की पुरी में जा सकते हैं जो उपद्रवी है और तीनों जगतों को रुलाने वाला है। वह विश्रवा का पुत्र है किंतु मूत्र के समान तिरस्कृत है। कृपया जाकर उसका वध करें और अपनी पत्नी सीता देवी को फिर से प्राप्त करें। हे महान वीर, यद्यपि मेरे जन्म के कारण आपको लंका जाने में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन आप इसके ऊपर पुर बनाकर अपने दिव्य यश का विस्तार करें। आपके इस अद्भुत असामान्य कार्य को देखकर भविष्य में सारे महान योद्धा तथा राजा आपकी महिमा का गान करेंगे। 16। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जल में उन पर्वत श्रृंगों को फेंक कर जिनके सारे वृक्ष बंदरों द्वारा हाथ से हिलाए गए थे, समुद्र के ऊपर पुल बना चुकने के बाद भगवान रामचंद्र सीता देवी को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका गए। रावण के भाई विभीषण की सहायता से भगवान सुग्रीव, नील, हनुमान इत्यादि वानर सैनिकों के साथ रावण के राज्य लंका में प्रविष्ट हुए, जिसे हनुमान ने हनुमान ने पहले ही भस्म कर दिया था। श्लोक संख्या 17। लंका में प्रवेश करने के बाद सुग्रीव, नील, हनुमान आदि वानर सेनापतियों के नेतृत्व में वानर सैनिकों ने सारे विहार स्थलों, अन्न के गोदामों, खजानों, महलों के द्वारों, नगर के फाटकों, सभा भवनों, महल के छजों और यहाँ तक कि कबूतर घरों में अधिकार कर लिया। जब नगरी के सारे चौराहे, चबूतरे, झंडे तथा गुंबदों पर रखे सुनहरे गमले ध्वंस कर दिए गए, तो समूची लंका नगरी उस नदी के सदृश प्रतीत हो रही थी जिसे हाथियों के झुंड ने मत दिया हो। 18। जब राक्षसपति रावण ने वानर सैनिकों द्वारा किए जा रहे उपद्रवों को देखा, तो उसने निकुंभ, कुंभ, दुम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक तथा अन्य राक्षसों एवं अपने पुत्र इंद्रजीत को भी बुलवाया। तत्पश्चात उसने प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन को और अंत में कुंभकर्ण को बुलवाया। इसके बाद उसने अपने सारे अनुयायियों को शत्रुओं से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। लक्ष्मण तथा सुग्रीव, हनुमान, अंधमात, नील, अंगद, जांबावंत तथा पसंद नामक वानर सैनिकों से गिरे हुए भगवान रामचंद्र ने उन राक्षस सैनिकों पर आक्रमण कर दिया जो विविध अजेय हथियारों से यथा तलवारों भालों बाणों प्रयासों प्रासों रुष्टियों शक्ति बाणों खंगों तथा तुमारों से सज्जित थे। अंगद तथा रामचंद्र के अन्य सेनापतियों ने शत्रुओं के हथियारों पैदल सैनिकों घोड़ों तथा रथों का सामना किया और उन पर बड़े बड़े वृक्ष पर्वत श्रृंग गदा तथा बाण फेंके। इस तरह श्री रामचंद्र जी के सैनिकों ने रावण के सैनिकों को, जिनका सौभाग्य पहले ही लूट चुका था, मार डाला, क्योंकि सीता देवी के क्रोध से रावण पहले ही ध्वंस हो चुका था। 21 तत्पश्चात जब राक्षस राज रावण ने देखा कि उसके सारे सैनिक मारे जा चुके हैं तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ। अतएव वह अपने विमान में सवार हुआ जो फूलों से सजाया हुआ था और रामचंद्र की और बड़ा जो इंद्र के सारथी मातली द्वारा लाए गए तेजस्वी रथ पर आसीन थे। तब रावण ने भगवान रामचंद्र पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की। भगवान रामचंद्र ने 22 भगवान रामचंद्र ने रावण से कहा, तुम मानव बक्षियों में अत्यंत गर्हित हो, निसंदेह तुम उनकी विष्टा तुल्य हो, तुम कुत्ते के समान हो, क्योंकि वह घर के मालिक के न होने पर रसोई से खाने की वस्तु चुरा लेता है। तुमने मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया है, इसलिए जिस तरह यमराज पापी व्यक्तियों को दंड देता है उसी तरह मैं भी तुम्हें दंड दूंगा। तुम अत्यंत नीच पापी तथा निर्लज हो, अतएव आज मैं तुम्हें दंड दूंगा, क्योंकि मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। नेक्स्ट श्लोक। इस प्रकार रावण को धिक्कारने के बाद भगवान रामचंद्र ने अपने धनुष पर बाण रखा और रावण को निशाना बनाकर बाण छोड़ा जो रावण के हृदय में वज्र के समान भेद गया। इसे देखकर रावण के अनुयायियों ने चिल्लाते हुए तुमुल ध्वनि की, हाय हाय क्या हो गया, क्योंकि रावण अपने दसों मुखों से रक्त वमन वमन करता हुआ अपने विमान से उसी तरह नीचे गिर पड़ा जिस प्रकार कोई पुण्यात्मा अपने पुण्यों के चुक जाने पर स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरता है। नेक्स्ट। हे परम सौभाग्यवान, तुम काम वासना के वशीभूत हो गए थे, अतएव तुम सीता देवी के श्लोक संख्या 25 लक्ष्मण के बाणों द्वारा मारे गए अपने अपने पतियों के शोक में अपनी छाती पीटती हुई स्त्रियों ने अपने अपने पतियों का आलिंगन किया और फिर वे कारुणिक स्वर में रोदन करने लगी जो हर एक को द्रवित करने वाला था। हे नाथ, हे स्वामी, तुम अन्यों की मुसीबत की प्रतिमूर्ति थे, अतएव तुम रावण कहलाते थे, किंतु अब जब तुम पराजित हो चुके हो, हम भी पराजित हैं, क्योंकि तुम्हारे बिना इस लंका के राज्य को शत्रु ने जीत लिया है। बताओ न अब लंका विश्व की शरण में जाएगी। बताओ न अब लंका विश्व की शरण में जाएगी। नेक्स्ट, हे परम सौभाग्यवान, तुम काम वासना के वशीभूत हो गए थे, अतएव तुम सीता देवी के प्रभाव तेज को नहीं समझ सके। तुम भगवान रामचंद्र द्वारा मारे जाकर सीता जी के साप से इस दशा को प्राप्त हुए हैं। हे राक्षस कुल के हर्ष, तुम्हारे ही कारण अब लंका राज्य तथा हम सबों का भी कोई संरक्षण नहीं रहा। तुमने अपने कृत्यों के ही कारण अपने शरीर को गिद्धों का हार और अपनी आत्मा को नरक जाने का पात्र बना दिया है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रावण के पवित्र भाई तथा रामचंद्र के भक्त विभीषण को कौशल के राजा भगवान रामचंद्र से अनुमति प्राप्त हो गई तो उसने अपने परिवार के सदस्यों को नरक जाने से बचाने के लिए आवश्यक अंत्येष्टि कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र ने सीता देवी को अशोक वन में सिंसपाल नामक वृक्ष के नीचे एक छोटी सी कुटिया में बैठी पाया। वे राम के वियोग के कारण दुखी होने से अत्यंत दुबली पतली हो गई थी। अपनी पत्नी को उस दशा में देखकर भगवान रामचंद्र अत्यधिक दयाद्र हो उठे। जब वे पत्नी के समक्ष आए तो वे भी अपने प्रियतम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनके कमल सदृश मुख से आह्लाद झलकने लगा। भगवान रामचंद्र ने विभीषण को लंका के राक्षसों पर एक कल्प तक राज्य करने का अधिकार सौंपकर सीता देवी को पुष्प से सज्जित विमान पुष्पक विमान में बैठाया और फिर वे स्वयं उसमें बैठ गए। अपने वनवास की अवधि समाप्त होने पर हनुमान, सुग्रीव तथा अपने भाई लक्ष्मण समेत भगवान अयोध्या लौट आए। श्री रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की। तो बहुत लंबा अध्याय है, तो 9 बजे हमें कथा संपन्न करनी है, तो मैं यह कथा को विराम दूंगा और भगवान सीता मैया के साथ और सुग्रीव हनुमान के साथ पुष्पक विमान में अयोध्या वापस लौट चुके हैं, तो यह कथा योग्य स्थल पर विराम करेंगे। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? सो थैंक यू वेरी मच। रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, वैष्णव भक्त वृंद की, श्री राधिका रमण की, श्री कृष्ण बलराम।